Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mane ab vyashti chhod de, ab vichar mat karna vyashti ka. Acha bole, ठीक है, पंचभूत हैं और उनमें कोई चेष्टा हो रही है, धरती घूम रही है, ग्रह नक्षत्र सब घूम रहे हैं, नारायण ये सब क्रिया हो रही है, तो ये प्राणमय कोष जो है, क्रिया जो है ये प्राणमय कोष किसकी इच्छा से हो रहा है। जैसे इस शरीर में इस इच्छा से हमारा ये शरीर चलता है। महाराज श्री कहते थे कि अगर किसी को अपनी उम्र बढ़ानी हो तो अपना बड़ा लक्ष्य रख ले कोई। बोले मुझे तो इस जीवन में ये प्राप्त करना है और इस इच्छा को बलवती करें, तो वो जो बलवती इच्छा है ना वो आपको जिंदा रखेगी। और जो इतने में ही संतुष्ट हैं, खाना मिल गया ठीक है, सोना मिल गया, मकान मिल गया, हो गया, तो वो तो फिर साधारण जैसा जिसका प्रारब्ध है उसी के अनुसार होता। तो अब ये सारे संसार में जो क्रिया हो रही है किसकी इच्छा से चल रही है, तो इसी को मनोमय कोष बोलते हैं। मनोमय पुरुष, मैं हिरण्यगर्भ हूं। मन में संकल्प कहां से आ रहे हैं, संकल्पों का कर्ता कौन है कि हिरण्यगर्भ है, तो मैं हिरण्यगर्भ हूं। हिरण्यगर्भ की प्रतिष्ठा क्या है, तो बोले आनंदमय। आनंदमय माने अव्यक्तोपाधिक चैतन्य, प्रकृत्योपाधिक चैतन्य जिसको ईश्वर बोलते हैं। तो बोले ये तो अभिमान हो जाएगा कि मैं ईश्वर हूं। अरे भाई, अभिमान तब होता है जब आप उपाधि को मानते हो, और जब उपाधि को छोड़ करके मानते हो तो अभिमान नहीं होता है। अगर घड़ा ये कहे, मान लो घड़ा छोड़ दो, अंगूठी ये कहे कि मैं सोना हूं, और हार ये कहे कि तू कैसे कह सकती है कि मैं सोना हूं, चवन्नी भर तेरे में सोना है, देख मेरे हार में 10 तोले सोना है, तो क्या सच बोलता है वो? अरे चवन्नी भर छोड़ो, 51 भर भी सोना है, अपने को सोना कह सकता है, क्योंकि आकृति वजन इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो उपाधियां हैं। ऐसे ये जो ब्रह्म है ये तो सोना है नारायण, तो सब अपने को ब्रह्म है ही, इसलिए ब्रह्म कह भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, इसमें अभिमान की कोई बात नहीं है। अभिमान तो उपाधि से होता है, इतना बड़ा है तो अच्छा बड़ा है, इतना छोटा है तो ये छोटा है, छोटा बड़ा नहीं होता है धातु में, जो है वस्तु में छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से ये लौट करके फिर वहीं ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, इसी को उपसंक्रमण बोलते हैं। तो यहां प्रश्न उठाते हैं भाष्यकार कि क्या ये सोचने वाला ब्रह्म ही है, या सोचने वाला अलग है और ब्रह्म के बारे में सोच रहा है। तो कहते हैं आप श्लोक मत भूल जाइए, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जानने वाला माने जो सोच रहा है ब्रह्म के बारे में, वो ब्रह्म है ही, सिर्फ अविद्या से अपने को ये मानता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। तो उस अविद्या का नाश करना शास्त्र का प्रयोजन है, कोई नया ब्रह्म उत्पन्न करना शास्त्र का प्रयोजन नहीं है। तो बोले ब्रह्म ब्रह्म को जानता है। कल वो कोई कह रहे थे ना कि क्या स्वयं स्वयं को जान सकता है, ये कर्तृ कर्म विरोध है। तो अगर ये जानना कर्म रूप हो तब तो कर्तृ कर्म विरोध होगा। नारायण इसमें तो सिर्फ मिथ्या को मिथ्या जानना है, तो जो छोटा जैसे आपने रस्सी को सांप जाना तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ, फिर रस्सी को रस्सी जान लिया, तो अब ये हुआ क्या कि मिथ्या का ही तो अपवाद हुआ, सांप का सच्चे सांप का अपवाद नहीं हुआ, उसका तो अपवाद हो ही नहीं सकता है। जो पहले से ही मिथ्या है और उसको हम सत्य के समान मान रहे हैं उसी का अपवाद किया जा सकता है। तो हमने मान लिया कि हम ये शरीर हैं, हम जीव हैं और आते हैं जाते हैं करता है भोगता है सुखी है दुखी है नारायण, ये सब मान लिया तो बोले ये सब मिथ्या सर्प हैं, इनका अपवाद हो सकता है। अगर ये सच्चे हों तो इनका अपवाद नहीं हो सकता। तो शास्त्र में भी फिर दोष आएगा कि वो गलत काम में हमको नियोजित कर रही है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं तो जैसे कहीं जाना होता है तो नक्शा बना के दे देते हैं और बता देते हैं, देखो भाई यहां से जाओगे तो तुम्हें ये खंभा मिलेगा, फिर ये बोर्ड लगा होगा, सारा नक्शा बना के दे देते हैं, तो उसके हिसाब से वो देखता जाता है चलता जाता है पहुंच जाता है। तो ऐसे ही ये शास्त्र जो है ये तो ग्राम का माने जहां पहुंचना है उसका परिचय देने के समान है, ये कोई तत्व ज्ञान थोड़ा ही है। तो बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं शंकराचार्य भगवान, वो कहते हैं कि वहां ऐसे थोड़ी उपदेश किया जाएगा कि तुझे उस गांव में जाना है तो तू वही गांव है, वहां तो ये उपदेश दिया जाएगा कि ऐसे जाओगे तो तुम उस गांव में पहुंच जाओगे, माने वो गांव जो है वो तुमसे अलग है ही और तुम उससे अलग हो, अब तुम उसको प्राप्त करना है तो वहां तो ज्ञान के बाद प्रयत्न की आवश्यकता होती है इच्छा होती है, लेकिन यहां तो ये बताया जाता है कि तू ब्रह्म है तुम ब्रह्म हो जाओगे, ऐसा थोड़ी शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है तुम ब्रह्म हो का मतलब अभी हो, और अगर अभी हो तो पहले भी थे, पहले क्यों नहीं मालूम पड़ता था, बोले इसी को अविद्या बोलते ना जानकारी बोलते, तो ये ना जानकारी अविद्या ये निवृत्त हो जाए तो बोले कर्म तो फिर भी चाहिए मोक्ष के लिए, थोड़ा बहुत तो कर्म करना ही सुनने ही चाहिए, सुनने रूपी क्रिया चाहिए। तो बोले किसी क्रिया से, क्रिया का फल ज्ञान नहीं है, क्रिया का फल तो अनित्य होता है। जो निवर्तक ज्ञान है किसी को हटाने वाला जो ज्ञान है वो तो विनाशी ही है, जैसे आप सुनोगे तो अविद्या निवृत्त हो जाएगी, तो ये अविद्या को खत्म करने वाला जो विद्या ज्ञान है वो तो विनाशी है, वो तो फिर भी वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जिसको जाना और स्वयं रूप से जाना तो वो स्वयं तो पहले भी स्वयं ही था, अब भी स्वयं ही है, आगे भी स्वयं ही रहेगा, इसलिए उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो प्रमाण देते हैं ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ये मांडुक कारिका है कि जब ज्ञान हो जाता है तो द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है, और दृष्टांत देते हैं कि जैसे सुषुप्ति में द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है, तो बस यहां पकड़ता है पूर्व पक्षी, बोले आप ये सुषुप्ति करते हो, जब जागृत और स्वप्न में द्वैत मालूम पड़ता है तो उसको तो मिथ्या कहते हो, और सुषुप्ति में द्वैत मालूम नहीं पड़ता है तो उसको पकड़ के बैठ जाते हो कि ये सच्चा है। अगर विचार करना है तो तीनों को मिथ्या मानो ना, ग्रहण भी मिथ्या है द्वैत का और अग्रहण भी मिथ्या है दोनों का, तीनों का। तो उत्तर देते हैं कि सुषुप्ति में जो हमें ग्रहण नहीं होता है वो किसी करण से नहीं मालूम पड़ता है, ऐसा नहीं है। वहां करण ही नहीं है कोई सुषुप्ति में। जागृत और स्वप्न में जो द्वैत मालूम पड़ता है वो तो करण सापेक्ष है, माने इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, इनसे द्वैत मालूम पड़ता है। अच्छा, तो ये इनका जो विषय है वो तो मिथ्या है, लेकिन जो यंत्र लगा रखे हैं हमने शरीर में, ये पांच और छठा अंतःकरण, ये यंत्र भी तो संसार ही है, इसको क्यों नहीं पहले मिथ्या मानते हो? आत्मा की दृष्टि से तो सबसे पहले यही आते हैं यंत्र, यंत्र के बाद फिर संसार आएगा। तो संसार को तो मिथ्या मानते हो, यंत्रों को सच्चा मानते हो। तो ये तो स्पिरिट नहीं है ज्ञान की। अगर मिथ्या है तो यंत्र पहले मिथ्या है, और उस मिथ्या से जो कुछ मालूम पड़ता है वो भी मिथ्या है। मिथ्या यंत्रों से मिथ्या ज्ञान होता है। आत्मा में बैठ के सोचना, माने इन यंत्रों के पीछे बैठ के सोचना। और सुषुप्ति में क्या होता है कि यंत्र ही नहीं है कोई, ना अंतःकरण है ना इंद्रियां है, कोई यंत्र ही नहीं है। तो वो जो पीछे बैठा हुआ है वही तो शेष रह गया। तो सुषुप्ति में जो शेष रहता है वो निर्निमित्तक है, माने द्वैत का जो वहां ग्रहण नहीं हो रहा है उसका कोई निमित्त नहीं है, करण नहीं है कोई, करण सापेक्ष नहीं है। और जागृत स्वप्न में जो द्वैत का ग्रहण हो रहा है वो करण सापेक्ष है, इसलिए मिथ्या है। करण ही मिथ्या है आत्मा में, तो गड़बड़ाओ मत नारायण। जो साक्षी चैतन्य शुद्ध सुषुप्ति में शेष रह जाता है वो क्या जागृत स्वप्न में नहीं रहता? रहता है, वही तो सब जान रहा है, वही मैं हूं। और उसमें से उपाधि यदि हटा दो तो वही ब्रह्म है। तो ये उपसंक्रामति जो है ये कोई क्रिया नहीं है, ये ज्ञान ही है। बस छोटे ज्ञान को छोड़ते जाओ, बड़ा ज्ञान पकड़ते जाओ। मैं शरीर हूं ये छोटा ज्ञान है, मैं पंचभूत हूं ये बड़ा ज्ञान है, मैं एक शरीर में सांस हूं ये छोटा ज्ञान है, मैं संपूर्ण सृष्टि में जो क्रिया शक्ति है वो हूं ये बड़ा ज्ञान है। छोटे को छोड़ते जाओ, बड़े को पकड़ते जाओ, अंत में मैं आनंद जो अनुभव है आ रहा है सो हूं, तो बोले ये छोटा ज्ञान है। मैं अनुभव करने वाला, आनंद को अनुभव करने वाला आनंद स्वरूप ज्ञान हूं, ये ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब ये नवे अनुवाक की श्रुति है, अंतिम है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन इति, एतम हि वाव न तपति किमहं साधुना कर्वम किमहं पापम अकर्वम इति। सय एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते, उभे हे वैश्येते आत्मानं स्पृणुते, य एवं वेद इति उपनिषत्। श्रुति स्वयं इस ब्रह्मानंद वल्ली को उपनिषद कहती है। वैसे तो तीन चैप्टर हैं इसमें, तो तीन चैप्टर में पूरे तीनों हो जाए तब कहना चाहिए ना इति उपनिषद, लेकिन ये ब्रह्मानंद वल्ली की महत्व बताते हैं कि श्रुति इसी को कहती है कि यही उपनिषद है, ब्रह्म विद्या इतनी है। अच्छा, वो ब्रह्म, अब ये प्रश्न जो है बना ही रहता है नारायण, कैसे मिले, कैसे अनुभव हो? बोले यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, शब्द से जो कुछ भी जाना जाता है वो ब्रह्म नहीं है और मन से जो कुछ भी जाना जाता है वो ब्रह्म नहीं है, वो अभिमानी है। एक सज्जन थे, मद्रासी थे, तो आ गए, टीचर हो गए कॉलेज में। अब वो हिंदी बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं समझते। तो पढ़ा तो दें, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना था तो पढ़ा तो दें। वो अब लड़के उनको तंग करें तो हिंदी में गाली दें। वो पट्टा कुछ समझता ही नहीं था, आई डोंट नो व्हाट यू से। तो हॉस्टल में रहता था तो किसी ने उसे बताया कि लड़के क्या कहते हैं। बोले तुमको गाली देते हैं। अब वो गाली ऐसी थी कि मैं आपको सुना नहीं सकता। बस उसका वो गाली का जैसे ही उसने अर्थ समझा तैसे ही उसका मन उस जगह से उखड़ गया, थोड़े दिन में वो छोड़ के चला गया। बस ये तो जब तक आप समझते हो तभी तक अच्छा बुरा है, और समझना बंद कर दो। सब शब्दों का अर्थ जब एक ही हो जाता है तब समझो चैतन्य महाप्रभु का है ना, कि जब उनका जागरण हुआ तो स्कूल चलाते थे, पाठशाला, न्याय पढ़ाते थे, व्याकरण पढ़ाते थे। तो विद्यार्थी पूछे गुरुजी इस सूत्र का क्या अर्थ है, बोले नारायण। बोले इस सूत्र का क्या अर्थ है, कि नारायण। बोले हम नारायण लिख देंगे तो परीक्षा में थोड़े पास हो जाएंगे, आप सूत्र का अर्थ बताइए। बोले भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मुझे तो अब एक ही अर्थ ज्ञात होता है, आप दूसरे स्कूल में चले जाओ। वो पाठशाला बंद करनी पड़ी। तो हमारा ब्रह्म ज्ञान ऐसा तो नहीं कि दिमाग खराब हो जाए, या होशो हवास में रहता है आदमी, लेकिन आंतरिक अर्थ सबका ब्रह्म ही जानता है। तो महाराज जी बोलते थे कि ब्रह्मज्ञानी को बुखार आता है तो वो भी ब्रह्म ही होता है, ऐसे बोलते थे। उसकी दृष्टि में बुखार बुखार नहीं है, अच्छा ब्रह्म आ गए, ठीक है, चले गए, ब्रह्म चले गए। अरे कहने में क्या हर्ज है, ऐसे ही नाटक ही करो। नाटक करने से क्या होगा, एक दिन असलियत हो जाएगी। तो लिखते हैं कि जो संसार के लौकिक और पारलौकिक पदार्थ हैं वो तो शब्द के विषय होते हैं, वाणी के विषय होते हैं, और जो अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं वो वृत्ति के विषय होते हैं। वृत्ति से आप कल्पना भी कर सकते हो, वृत्ति से आप दूसरे अर्थ भी निकाल सकते हो। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ब्रह्म तो सब शब्दों का आधार अधिष्ठान है और सब वृत्तियों का आधार अधिष्ठान है, इसलिए ये सब उसको पूरा पूरा नहीं बोल सकते हैं। अविद्या निवृत्ति में ही इनका प्रयोजन है। अविद्या निवृत्त करके शब्द निवृत्त हो जाता है, अविद्या निवृत्त करके वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। देखो जिसको ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं वो क्या है, ये भी तो एक वृत्ति है ही ना, लेकिन आपने सुना ही होगा, सब सत्संगों में बताया जाता है कि ब्रह्माकार वृत्ति अविद्याकार जीवाकार वृत्ति को निवृत्त करके स्वयं भी निवृत्त हो जाती है। तो ये है क्या ब्रह्माकार वृत्ति? तो ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब होता है ब्रह्म के आकार में परिणत वृत्ति, यही तो इसका अर्थ है। जैसे घटाकार वृत्ति क्या है, घट के आकार में बदली हुई वृत्ति, तो ब्रह्माकार का मतलब हुआ ब्रह्म के आकार में परिणत हुई वृत्ति। तो अब ब्रह्म क्या वृत्ति में ठस जाएगा? तो महाराज श्रीनगर दो बात इसमें बताई। बोले जो शास्त्रीय ब्रह्म है, ये जो हमने अपने को जीव माना हुआ है, ये मैं शरीर हूं, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, लेकिन मैं जीव हूं ये प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है, ये शास्त्र से सिद्ध है। अब शास्त्र का ही दूसरा वचन ये है कि तुम ब्रह्म हो, तो शास्त्र से सिद्ध जैसा ब्रह्म है वैसा वृत्ति में लाओ। लेकिन जब लाओ तब लाओ जबकि गुरुजी कहें कि तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म शब्द का अर्थ आपकी वृत्ति में है तो तदाकारता को उसके कहने से प्राप्त हो जाओगे। अब मैं आपसे चाहे कितना भी कहूं कि आप घोड़ा हो, या मेरे से कोई कहे कि आप गधा हो, तो मैं मान थोड़ी लूंगा, क्योंकि मेरा ज्ञान है कि मैं मनुष्य हूं। ऐसे ही जब शास्त्र में इतनी निष्ठा होती है कि ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता, जब ये कह रहा है शास्त्र कि तुम ब्रह्म हो, और ब्रह्म सत होता है, चित होता है, आनंद होता है, अनंत होता है, सर्वव्यापक होता है, निर्गुण होता है, निराकार, जितने भी ब्रह्म के संबंध में शब्द हैं उन सब का अर्थ सुनकर के निश्चय किया हुआ है कि ब्रह्म ऐसा होता है, और शास्त्र कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तो क्या वृत्ति बननी चाहिए? कि हां जी मैं ब्रह्म हूं, यही तो होगी ना। तो तत्वमसी ये गुरु वाक्य है, गुरु जी बोलते हैं तुम ब्रह्म हो, तो शिष्य क्या बोलेगा? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, इसमें संशय विपर्य होगा, उस समय तो वृत्ति बन गई। संशय विपर्य का यदि निवृत्ति हो गई है तो इसके तुरंत बाद आएगा कि अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म कहां रहता है जी? बोले अयम आत्मा ब्रह्म, यही जो आत्मा है जिसको मैं बोलता हूं। ये मैं तो नाम है, मैं आत्मा है कि ब्रह्म, इसको छोड़ दो। किसी का नाम कुछ रख दो पप्पू, और नाम है उसका मोहन, तो मोहन के नाम से भी बोलता है और पप्पू के नाम से भी बोलता है। ऐसे ये मैं एक नाम है, और सब भाषाओं में यही नाम है। ताज्जुब की बात यह है, आई माने भी मैं ही होता है, मैं माने भी मैं ही होता है, आम माने भी मैं ही होता है। मैं का अर्थ जो है वो सब भाषाओं में एक ही है। तो जो शास्त्रोक्त ब्रह्म है उसके आकार में जब वृत्ति बदल जाती है बिना प्रयत्न के, उसको ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। जब तक प्रयत्न है तब तक उसको ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बोलते। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये तो तुम दोहरा रहे हो नारायण, दोहराते दोहराते आपको अभिनिवेश हो जाता है इसमें कि मैं ब्रह्म हूं। इसको ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बोलते, इससे अविद्या निवृत्त नहीं होती है। निदिध्यासन का परिपाक ब्रह्माकार वृत्ति होता है। तो एक तो उसमें शास्त्रोक्त तो ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए पहले, और जिस समय वो वृत्ति उठे उस समय कर्ता भोक्तापना उसमें नहीं होना चाहिए, तब वो अविद्या निवर्तक वृत्ति होती है। अब क्या लक्षण है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया? तो कहते हैं कि वो न तो पछतावा करता है नारायण, एतम हवाव न तपति, कोई उसे पछतावा नहीं रहता। अरे मैंने अब तक ये काम अच्छा था क्यों नहीं किया, ये काम मुझको नहीं करना चाहिए था मैंने क्यों कर लिया, माने भूतकाल को लेकर के जो पछतावा रहता है मन में वो नहीं होता है। इसलिए जब मरता है तो शांत होकर के मरता है, और साधारण आदमी जब मरता है तो, मैंने कल बताया था कि वो तो रील चलती है नारायण, उस समय बुद्धि का कंट्रोल होता नहीं है, मैंने ये अच्छा किया मैंने ये बुरा किया, बस उसी के हिसाब से उसे आगे नरक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो किमहम साधु ना करवम, ये अच्छा काम मैंने क्यों नहीं किया, किमहम पापम अकर्वम, मैंने ये पाप क्यों कर दिया, इस प्रकार से पछतावा उसको मृत्यु के समय में नहीं होता है, क्योंकि अपने को वो कर्ता भोक्ता मानता ही नहीं है, न मैंने कभी कुछ किया, न कर रहा हूं, न आगे करूंगा। जब करता ही नहीं है तो भोगेगा कौन? माँ बाप कहते हैं ना बेटों से, हमने तेरे लिए इतना किया, तू हमारी सेवा नहीं करता है। तो ये जो किया है तो करते ही आप भोगता हो गए, इसीलिए आपको शिकायत है कि तू अब क्यों नहीं कर रहा है। आपने कर्तव्य का पालन किया या किसी पे एहसान किया जा रहा है? अब दूसरा अगर नहीं करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप भोगता तो हो ही नहीं। सिर्फ कर्तव्य का पालन जो करता है और उसका भोग नहीं चाहता है, वो ही कर्मयोगी कहलाता है। इस प्रकार से ये अपना यही उसका बल रहता है। स य एवं वेद, इस प्रकार से जो जानता है। इति उपनिषद, बस इतना ही उपनिषद है। उपनिषद माने उप माने पास, नी माने पूरे तौर से, और शद माने तीन चीजें होती हैं, विसरण, गति और अवसादन। तत्व ज्ञान हो जाता है, ये गति है, सच्चाई का पता चल जाता है। और अवसादन, संसार का जो मूल्य भर गया है देखा देखी, वो अवमूल्यन हो जाता है उसका। अवमूल्यन तो अब सब समझते हैं आजकल, रुपए का अवमूल्यन हो गया, मतलब कीमत उसकी घट गई, अब उसकी कोई कीमत नहीं है। और विसरण, अविद्या जो है वो नष्ट हो जाती है। ये तीन फल जिस विद्या के हों उसको उपनिषद बोलते हैं। तो इति उपनिषद, बस इतना ही उपनिषद है। ये ब्रह्मानंद वल्ली जो है ये स्वयं में पूर्ण उपनिषद है। मैंने थोड़ा संक्षेप भी कर दिया है समय की सीमा के भीतर, और आज पूरा भी करना ही था। तो ये ब्रह्मानंद वल्ली ईश्वर कृपा से पूरी हुई। हरिः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम् शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्।